ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड है सबकी? वेरी गुड है। और मॉर्निंग गुड इसलिए है क्योंकि आज से हमारी मॉर्निंग गॉडली मॉर्निंग भी होगी, है ना? जो आज का हमारा राजयोग का सेशन था गॉड रियलाइजेशन पे, तो आज से गुड मॉर्निंग एंड गॉडली मॉर्निंग। ओके, तो आज की मॉर्निंग के इस प्रथम सत्र का विषय है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, संकल्प से सिद्धि, माना सक्सेस थ्रू थॉट पावर। तो इस विषय पे अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं आज के सेशन के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं और जो विशिष्ट अतिथि हैं उनको मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे साथ हैं आज आदरणीय बीके तारा दीदी जी, ब्रह्मा कुमारी अदिति बहन जी और हमारे विशिष्ट अतिथि भ्राता अशोक कुमार जी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस से हमारे बीच पधारे हैं। तो मैं सभी वक्ताओं और विशिष्ट अतिथि का स्टेज पे स्वागत करती हूँ। सभी एक बार फिर से कर्तव्य ध्वनि से हमारे वक्ताओं और अतिथियों का स्वागत करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से कि वो हमारे मंचासीन सम्मानित मुख्य वक्ता और विशिष्ट अतिथियों का पुष्पों द्वारा स्वागत करेंगे। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी तारा दीदी जी का स्वागत हो रहा है, हमारी कीनोट स्पीकर बीके अदिति बहन जी और हमारे स्पेशल गेस्ट भ्राता अशोक कुमार जी यूपी पुलिस से। सेशन शुरू करने से पहले हम 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे।
जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।
ओम शांति। आज के सेशन का टॉपिक संकल्प से सिद्धि, सक्सेस थ्रू थॉट पावर। इस विषय पे आज हमारी कीनोट स्पीकर हैं हमारी आदरणीय और स्नेही ब्रह्मा कुमारी अदिति बहन जी। मैं उनके विषय में आपको कुछ बताना चाहूंगी कि अदिति बहन जी पिछले 25 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और वो एक कुशल राजयोग टीचर और मेडिटेशन ट्रेनर हैं। अदिति बहन जी ब्रह्मा कुमारीज के स्पोर्ट्स विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू के मल्टीमीडिया की स्पोक्स पर्सन भी हैं। आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। आपके विषय में बताना चाहेंगे कि आपने मास कम्युनिकेशंस में मास्टर्स किया है और आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बहुत ही विशाल है। सबसे पहले आपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिल्ली गवर्नमेंट में अपनी सेवाएं दी हैं एज इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर। इसके साथ ही आपने दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन में भी एज आईईसी कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दी हैं। आपने अनेक नेशनल और इंटरनेशनल चैनल्स पर बहुत सारे स्पिरिचुअल लेक्चर्स और टॉक शोज किए हैं, जिनमें से मुख्य हैं दिव्या टीवी, पीस ऑफ माइंड चैनल, दिशा टीवी, कात्यायनी, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्पीकिंग ट्री, न्यूज नेशन, श्रद्धा चैनल, साधना टीवी, NDTV एंड द लिस्ट गोज ऑन। बहुत लंबी लिस्ट है। इसके अतिरिक्त आपने एक जर्नलिस्ट के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं दैनिक भास्कर में। आप ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम प्रेजेंटर रहे हैं। आपने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ज्ञानवाणी के लिए स्क्रिप्ट राइटर की सेवाएं दी हैं। आपको अपनी विशाल सेवाओं के लिए स्पोर्ट्स इंडिया फाउंडेशन, आयुष मिनिस्ट्री, विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं और बिजनेस एसोसिएशंस द्वारा सम्मानित भी किया गया है। अदिति बहन जी के व्यक्तित्व के बारे में मैं कहना चाहूंगी, उनसे मेरा कुछ समय का जो संपर्क रहा है तो मैंने देखा है कि आपकी वाणी अत्यंत ही मधुर और स्वभाव बहुत सरल है, लेकिन इसके साथ ही आपके संकल्प बहुत शक्तिशाली हैं और कार्यों में अत्यंत कुशलता है। तो ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी और इतने श्रेष्ठ व्यक्तित्व की धनी ब्रह्मा कुमारी अदिति बहन जी आज हमारे साथ हैं और वो इस विषय संकल्प से सिद्धि पे अपने विचार प्रस्तुत करेंगी।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आइए एक बार हम चारों ओर से अपने मन बुद्धि को समेट लें, क्योंकि सुबह से लेकर अब तक बहुत सारे सीन्स देख लिए हैं आपने और उन सीन्स को देखते हुए कई तरह के विचार चलते हैं, कई तरह की बातें मन में आते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम मन की बात कर रहे हैं, संकल्पों की बात कर रहे हैं, तो वो संकल्प जो फैले हुए हैं उन्हें हम पहले समेट लें। अभी भी यहाँ बैठे हैं तो कईयों का मन कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वहाँ जाता है, और यही तो खेल है कितने हम फोकस हैं और कितने हम डिस्ट्रैक्टेड हैं। हर पल खुद को नोट करना और हर पल अपने को सशक्त बनाना, फिर उसके बाद बनती है सिद्धि। सफलता एक दिन का अफेयर नहीं है, कुछ घंटों का अफेयर नहीं है। सफलता हमें ताउम्र चाहिए, और इसलिए प्रैक्टिस ताउम्र हर पल चलती रहनी चाहिए। तो पूरे सेशन के दौरान हम सभी का फोकस ये रहेगा कि आसपास की बातों से, जीवन की हलचलों से, दुनिया के उतराव और चढ़ाव से मेरा मन डिस्ट्रैक्टेड ना हो ना। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम करेंगे, केवल बात नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिस भी करेंगे, और उस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है वो भी एक्सपीरियंस करेंगे, यहाँ पर भी और फिर जब कर्म क्षेत्र पर जाएंगे वहाँ पर भी। तो एक मिनट के लिए मन को समेट लेते हैं, बाहर की बातों से, दुनिया के कर्मों से, सब कुछ बाहर है, अलग है, और मैं अंदर हूं, अलग हूं। जैसे बरसात की बूंदें इस हॉल में नहीं पड़ सकती, वैसे जीवन के उतराव चढ़ाव का प्रभाव, किसी के कर्मों का प्रभाव मेरे भीतर नहीं पड़ सकता। मैं अलग, बाहर अलग। ओम शांति। तो टॉपिक है मन का, और आप सभी ने पहला चैप्टर पढ़ा होगा कि मन एक शक्ति है। किसकी शक्ति है? किस किस ने मॉर्निंग क्लास अटेंड की थी कल? जिसने की थी वो बता सकता है। मन एक शक्ति है। किसकी शक्ति है? आत्मा की शक्ति है। और मन का काम है क्या? करता है मन सोचना, संकल्प करना। और दुनिया में कहते हैं मन जीते जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया वो सारे जग को जीत सकता है। जीत सकता है, है ना? और कहते हैं मन के हारे हार है। तो मन हरा भी तो सकता है, जिता सकता है। तो हार और जीत बाहर नहीं है, कहाँ है? मन में है। और आध्यात्मिकता में हमें एक और बात कहते हैं, जिंदगी में ना कभी हार होती नहीं है, कभी हार नहीं होती। क्यों? क्योंकि जीवन भर या तो जीतना है या तो सीखना है, दो ही चीजें होती हैं। हार कभी नहीं होती। ये मन का एक वहम है कि मेरी हार हुई, कोई बात नहीं, कुछ तो अनुभव लिया है ना मैंने। एग्जाम्स आते हैं, कुछ सिखाने के लिए भी आते हैं, पास करने के लिए, फर्स्ट लाने के लिए तो आते ही हैं, पर एक्सपीरियंस होल्डर बनाने के लिए भी तो आते हैं। ऐसे ही जीवन में कई पड़ाव आते हैं, तो उन पड़ावों से हम हारते नहीं हैं, हम सीखते हैं, या तो पार कर लेते हैं या तो कोई सबक सीख लेते हैं। ऐसा है? ऐसा है? हाँ। तो इसलिए जिस पल हम कहते हैं हम हार गए, उस पल खुद को समझाओ कि मैं हारा नहीं हूं। क्या किया है मैंने? कुछ सीखा है। तो या तो जीतना है या तो हारना तो है ही नहीं, शब्द ही नहीं है। शब्दकोश से निकाल दो ये शब्द, क्योंकि जिस पल नेगेटिविटी हमारे शब्दकोश से निकल जाएगी उस पल इन संकल्पों में शक्ति आनी शुरू हो जाएगी। मन के नेगेटिव संकल्प मेरे जीवन को हराते हैं। और संकल्प बीज है। क्या है? बीज है। तो जैसा बीज होता है वैसा फल होता है। अब ये संकल्प जो चलता है, हम सोचते हैं, फिर सोचते हैं, फिर और सोचते हैं, बीज को ना मिट्टी में और गहरा करते जाते हैं। ऐसा होता है? कोई भी संकल्प, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, आता है, स्पेशली नेगेटिव संकल्प। एक बार आया फिर क्या होता है? आता है और आता है, बार बार आता है। फिर केवल वो संकल्प नहीं रहता, उसका विस्तार होता जाता है। होता है? समझो किसी ने मन में वहम डाल दिया, तुम्हारे बस का नहीं है। एक बारी कहा, उसने एक ही बारी कहा था, फिर मैंने क्या सोचा? मेरे बस का नहीं है। फिर मैं क्या काउंट करूंगा? अपनी सारी कमी कमजोरियों के बारे में सोचना शुरू करूंगा और रिजल्ट निकाल लूंगा कि मेरे बस का नहीं। ऐसा होता है? होता है ना, सबके साथ होता है। ये बात को बड़ा करना आता है सबको? आता है? राई का पहाड़ बनाना आता है सबको? होता है ना, ऐसे ही होता है ना। किसी ने कह दिया भाई तुम में ये कमी है, तुम नहीं कर सकते, कोई भी कमी लाइफ के अंदर है ना। कोई कहता तुम्हारे बस का बोलना नहीं है, तुम्हारे बस का चलना नहीं है, तुम्हारे बस का दौड़ना नहीं है, तुम्हारे बस का ये उठाना नहीं है। ऐसे ही होता है, एक थॉट ही तो देता है। जैसे कोई मच्छर काट के चला गया और हमने क्या किया? खूब रगड़ा। फिर वो जो छोटा सा दाना होता है वो क्या बन जाता है? जख्म बन जाता है। वैसे ही होता है संकल्पों के साथ। कोई एक नेगेटिव थॉट हमें दे देता है और हम उसको रगड़ते रहते हैं, उसे जीवन का घाव बना देते हैं। और जिम्मेवारी किसको ठहराते? किसके कारण हुआ? उसने कहा, परिस्थितियां ऐसी थी, उस कारण ऐसा हुआ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते हम अपनी। थॉट किसी और ने दिया और उस थॉट के ऊपर मनन मंथन मैंने किया और रिस्पॉन्सिबल वो एक व्यक्ति जिसने एक बार थॉट दिया था। ऐसा होता है? होता है कि नहीं होता? इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी आपने सुनी है, भागवत के अंदर है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सुनेंगे? सभी सुनेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार क्या हुआ, श्री कृष्ण, बलराम और उनके एक फ्रेंड थे सात्विकी, तीनों जंगल से जा रहे थे। अब माइथोलॉजिकल सीरियल्स तो देखे होंगे आप सभी ने, टीवी पर आते हैं और पढ़ी भी होगी कुछ। जंगल से जा रहे थे, जाते जाते अंधेरा हो गया। अब पहले कोई गाड़ियां तो होती नहीं थी, अब अंधेरा हो गया तो सबने ये डिसाइड किया, नजर तो कुछ आ नहीं रहा, तो क्या करते हैं, रात ना यहीं बिता देते हैं। पर रात को जंगली जानवर होते हैं और फिर भागवत में तो लिखा आता है ना, बहुत सारे दैत्य भी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे दैत्य होते हैं, ये जानवर होते हैं, तो एक काम करते हैं, हम ना एक एक ड्यूटी ले लेता है, दो लोग सोएंगे और एक व्यक्ति पहरा करेगा। तो क्या हुआ, सबसे पहले ड्यूटी थी सात्विकी की 12 से 2, फिर बलराम जी की 2 से 4, फिर श्री कृष्ण जी की 4 से 6। तो सबसे पहले बलराम जी और कृष्ण जी सो गए और सात्विकी जी पहरा दे रहे थे। सामने एक नदी थी और नदी से एक बहुत बड़ा राक्षस प्रकट हुआ और राक्षस ने क्या कहा, क्या कहता है वो, मैं क्या करूंगा, खा जाऊंगा, तीनों को खा जाऊंगा। तो सात्विकी जी ने क्या कहा, तुम्हें तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध शुरू हो गई। किसके बीच में? दैत्य और सात्विकी के बीच में। अब वंडरफुल बात ये थी पूरे युद्ध की कि सात्विकी तो लड़ रहे थे, लेकिन वो दैत्य जितना लड़ता जा रहा था उतना उसका साइज बढ़ता जा रहा था। अब 2 घंटे तक वो युद्ध चलता रहा और दैत्य का साइज बहुत बड़ा हो गया। अब 2 घंटे हो गए, सात्विकी जी तो छोटे ही रह गए, और थक गए। अब टान थी किसकी? टान थी बलराम की। टान थी सातिकी ने बताया उसे, भाई ऐसे ऐसे है तो आप देखो क्या करना है। तो बलराम जी की टर्न स्टार्ट हुई। बलराम जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं इन सबको हाँ मार दूंगा, चिंता मत करो। फिर युद्ध शुरू हुई बलराम और दैत्य की। अब फिर वही कंडीशन आ गई, वही सिचुएशन, वही समस्या। क्या? वो लड़ता जाए और वो बढ़ता जाए, इंक्रीज होता जाए साइज उसका, बड़ा 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 बड़ा, बहुत बड़ा हो गया। 2 घंटे बीत गए। अब किसकी टर्न थी? श्री कृष्ण जी की टर्न। ना ध्यान से सुनेंगे, बहुत वंडरफुल स्टोरी है और इसका सबक उससे भी गहरा है। अब टर्न थी श्री कृष्ण जी की। अब श्री कृष्ण जी उठे, उसने बता दिया भाई ये है और इसकी ये कैरेक्टर है कि जिससे जितना लड़ता है उतना बढ़ता है। श्री कृष्ण जी ने कहा तुम सो जाओ आराम से, तुम चिंता मत करो। वो पेड़ के नीचे बैठे, उनके हाथ में बांसुरी थी और बजाना शुरू कर दिया। तो राक्षस कहे कि आओ लड़ो, नहीं तो खा जाऊंगा। लेकिन श्री कृष्ण जी को तो कोई असर ही नहीं, वो अपनी मुरली बजा रहे थे, अपनी धुन में लगे हुए थे। अब थोड़ी देर के बाद राक्षस चीख रहा है, चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है, लेकिन श्री कृष्ण जी पर कोई असर नहीं है, वो आराम से मुरली बजा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद राक्षस का साइज धीरे धीरे कम होने शुरू हो गया, छोटा 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 और छोटा हो गया। श्री कृष्ण जी ने राक्षस को उठाया और अपने गमछे में बांधा और मुरली बजानी शुरू कर दी। फिर सब उठ गए। थोड़ी 1-2 घंटे के बाद पूछा भाई राक्षस का क्या हुआ? श्री कृष्ण जी ने कहा अच्छा वो गमछा निकाला और दिखाया ये राक्षस। अब ये राक्षस वाली कहानी ये तो शास्त्रों में लिखी है, पर सबक हमारे लिए है। राक्षस कुछ नहीं है, क्या है? समस्याएं, परिस्थितियां, ये हमारे जीवन के विघ्न, ये एग्जाम्स होते हैं ना, परीक्षाएं। जो भी सिचुएशंस लाइफ में आते हैं, जो भी सर्कमस्टेंसेस लाइफ में आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आते हैं, चाहे व्यक्ति द्वारा चाहे परिस्थितियों द्वारा, वो आपके जीवन का राक्षस है। उसको लड़ना यानी लड़ना, लड़ते हैं आप उससे? लड़ते हैं। लड़ने का अर्थ समय देना, संकल्प लगाना। सोचते हैं, टाइम एनर्जी वेस्ट करते हैं, करते हैं ना? कोई समस्या आ गई, सोचना शुरू कर देते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पहले भी हुआ था, उसके साथ भी हुआ था, कितने सारे लिंक जोड़ते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। कौन कौन करता है? सब करते हैं, नहीं भी हाथ उठाएंगे ना तो भी पता, सब करते हैं। आदत है इंसान की छोटी सी बात को बड़ा बनाना। स्पेशली समझो घर में किसी को आना है, 2 घंटा लेट हो गया, कितने विचार चलेंगे, है ना? क्या क्या चलेगा? चलता है कि नहीं चलता है? चलता है ना? यही होता है, सबके साथ होता है। कोई बात हो गई, कोई कारण बन गया, अच्छा विचार नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा और फटाफट मल्टीप्लाई होता जाएगा। यानी जैसे ही आपने समस्या को टाइम दिया, संकल्प चलाने शुरू हो गए, समस्या बढ़नी शुरू हो गई, बढ़ती जाती है, फिर क्या होता है? खत्म हो जाती है या बढ़ती ही रहती है? खत्म तो नहीं होती ना। हम कितना सोचते हैं, है ना, कितना टाइम लगाते हैं, कितनी एनर्जी लगाते हैं, लेकिन समस्या तो कम होने की जगह, सबका यह अनुभव है जीवन का, फिर भी करते हैं ना, फिर भी करते हैं ना। तो समझ जाओ क्या करना है, ना टाइम देना है ना एनर्जी वेस्ट करनी है। नेगेटिव वेस्ट थॉट्स को खत्म करने का तरीका है, पहले उसको शक्ति मत दो। बीज है, खराब बीज आ गया, संकल्प बीज है, उसको टाइम और एनर्जी देना, यानी बीज को पानी देना, बीज को खाद देना। जितना आप उसको पानी देते हो, खाद देते हो, वो नेगेटिविटी का जो संकल्प है वो बढ़ता जाता है और हमारे जीवन के ऊपर हावी हो जाता है। कई बारी इसके कारण कई लोग अपने जीवन में सुसाइड भी कर लेते हैं। मेजॉरिटी लोगों के टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये जितने भी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसका मूल कारण है कि हम खुद एक बात को, छोटी सी बात को मल्टीप्लाई करते हैं, मनन करते हैं, मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, चिंता बनाते हैं, वर्णन करते हैं, कि नहीं? आजकल मोबाइल है, फोन करते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्या होता है फिर? समस्या सॉर्ट आउट हो जाती है या बढ़ती जाती है? बढ़ती जाती है। समस्या तो एक बार आई, मल्टीप्लाई हमने किसने किया? किसने किया? पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तभी तो ठीक करोगे। किसने किया मल्टीप्लाई? हमने किया, है ना? किया ना। और इसको ठीक कौन करेगा? एक बात याद रखें, संकल्प जब विकल्प बन जाते हैं, यानी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, जब व्यर्थ आ जाते हैं, तो क्या करना है? एक सॉल्यूशन, केवल प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करेंगे हम, सॉल्यूशन भी बताएंगे। और वो सॉल्यूशन आप खुद निकाल सकते हैं। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट हो, तुरंत कुछ अच्छा पढ़ें, अच्छा चिंतन करें। एक बात ध्यान रखें, नेगेटिव को नेगेटिव से नहीं, पॉजिटिव से जीता जाता है। व्यर्थ के लिए समर्थ संकल्प उत्पन्न करना पड़ता है। अक्सर यही होता है, क्या होता है? अंधकार की तरह है नेगेटिव थॉट्स, और हम क्या करते हैं? अंधकार में लड़ाई करते हैं। अंधेरे से लड़ोगे तो डर बढ़ेगा या कम होगा? अंधेरे के अंदर लड़ोगे, अंधेरा आ गया, अंधेरे से हमें डर लगता है और अंधेरे से लड़ रहे हैं, उसके लिए दिया जलाना पड़ता है, उसके लिए लाइट ऑन करनी पड़ती है। तो इसीलिए जिंदगी के अंदर अगर कुछ नेगेटिव है, वेस्ट है, पहले थॉट्स में आता है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट नहीं होता तो कुछ अच्छा सोचो, अच्छा पढ़ो, अच्छा देखो, फिर अच्छा होना शुरू होगा। याद रखें, संकल्प थॉट बार बार चले, चलते गए, फिर क्या होगा? वाणी में आएंगे, वाणी में आएंगे, व्यवहार में आएंगे, संस्कार बन जाएगा, स्वभाव बन जाएगा, आपका व्यक्तित्व बन जाएगा, हमारी पर्सनालिटी वैसे बन जाएगी। तो यदि आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना चाहते हो, जीवन को बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या बदलना पड़ेगा? संकल्प बदलने पड़ेंगे। नेगेटिव संकल्प कोई भी ना आए, उसके लिए पॉजिटिव संकल्पों का स्टॉक, यहां पर आपको क्या मिल रहा है? पॉजिटिव संकल्पों का स्टॉक मिल रहा है, है ना? थोक के भाव में मिल रहे हैं, ये खजाना मिल रहा है, तो इस खजाने को भर लो। तो जब आपकी लाइफ के अंदर कोई नेगेटिव परिस्थिति आई, याद रखेंगे परिस्थिति, इसकी फुल फॉर्म है पराई स्थिति, आपकी नहीं है, किसकी है? पराई है, कहीं और से आई है, आपकी स्थिति नहीं है। आपकी स्थिति क्या है? जो पहले दिन चैप्टर में पढ़ा, मैं कौन हूं? पॉजिटिव थॉट, मैं कौन हूं? मैं शांत स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं। ये क्या है? पॉजिटिव थॉट। चलिए दो मिनट के लिए एक पॉजिटिव थॉट्स का स्टॉक अपने अंदर भरते हैं। भरे। अभी बहुत कुछ है, वंडरफुल स्टोरीज है आपकी, ये सारी स्टोरीज आपकी हैं, जितने भी शास्त्रों में स्टोरीज है ना, वो हमारी आपकी हैं। उससे पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं खुद पर। ये एक्सपेरिमेंट जो अभी हम करेंगे, ये हर रोज सुबह उठते ही करेंगे। स्टॉक जो होता है ना, कई बार क्या होता है, स्टॉक बहुत सारा होता है, पैसे बहुत सारे होते हैं बैंक में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे पास पैसे हैं। फिर जब जरूरत का टाइम आता है ना, तो भूले हुए होते हैं, तो हमें लगता है पता नहीं है कि नहीं है। रोज है ना, अपनी वो अकाउंट वाली बुक खोलो, देखो कितना पैसा है मेरे पास, खुशी आ जाएगी। तो ऐसे ही रोज सुबह, वो तो पैसे की बात है, ये आपका अविनाशी खजाना है। तो रोज सुबह अपने अविनाशी खजाने का जो स्टॉक है इसे खोलो, और रात को सोने से पहले भी खोलो, और अपने आप को सम्मान देंगे, संकल्प देंगे कि मैं कौन हूं, क्या हूं। एक मिनट के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, मन को शांत करें, एकदम रिलैक्स। फील करें स्वयं को बाहर से अलग, मैं मस्तक के बीच चमकती हुई पावरफुल एनर्जी शक्ति हूं। मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मेरे भीतर अनंत सुख, अनंत प्रेम, असीम आनंद है। हाँ, मेरे भीतर असंभव को संभव करने की, हार को जीत में बदलने की, दुख को सुख में परिवर्तन करने की शक्ति है। ओम शांति। अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, अपना ये खजाना, अविनाशी खजाना खोलेंगे, याद दिलाएंगे, मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, हर विपरीत परिस्थिति को परिवर्तन करने की शक्ति मेरे भीतर विद्यमान है, याद दिलाएंगे। फिर देखो पूरा दिन कैसे निकलता है। अब इस चीज के अंदर सबसे बड़ा अवरोध क्या है, आपकी सिद्धि में सबसे बड़ा अवरोध बाहर नहीं है, याद रखेंगे। गीता में लिखा है, श्रीमद् भगवद गीता में एक लाइन है, आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और अपना शत्रु भी है, बाहर कोई शत्रु नहीं है। याद रखेंगे, ना परिस्थिति, ना कोई व्यक्ति, ना कोई समस्या, कोई आपका शत्रु नहीं है, मेरे भीतर ही शत्रु भी है और मित्र भी है। क्या बनना है डिसाइड करना है। अब सक्सेस के बीच में जो सबसे बड़ा अवरोध है वो क्या आता है, उसको समझने से पहले एक स्टोरी सुना दी आपको, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनेंगे। एक बार दो ब्राह्मण थे, तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी धारणाएं थी, जा रहे थे, रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी आ गई, नदी को क्रॉस करके आगे जाना था। अब नदी के पास गए तो ना वहां ना कोई नाविक था, ना कोई नाव थी, क्या करें, तैर कर जाना पड़ेगा। तो सोचा ठीक है, तैर के चले जाएंगे। दोनों ब्राह्मण तैरने के लिए जैसे नदी के पास पहुंचे, वहां एक औरत, एक स्त्री थी, नदी के पार थी, कहती है ब्राह्मणों से कि मुझे भी नदी पार करा दो। ब्राह्मणों ने एक दूसरे को देखा और फिर स्त्री को भी देखा और कहा कि भाई देखो, हम हैं ब्राह्मण बाल ब्रह्मचारी, हम तो पराई स्त्री को हाथ भी ना लगाएं, तो इसीलिए हमें माफ कर दो माता जी बहन जी, हम तो आपको पार नहीं करा सकते। वो जो स्त्री थी उसने हाथ जोड़े, पैर पड़े, कहा ब्राह्मण जी, नदी पार मेरा घर है, नाविक नहीं है, नाव नहीं है, रात हो जाएगी, मैं क्या करूंगी, आप मेरे पर मेहरबानी करें और मुझे पार करा दें। तो उन्होंने कहा, एक दूसरे को देखा, एक ने तो साफ मना किया कि भाई देखो मैं नहीं कुछ कर सकता, दूसरे को रहम आ गया, उसने उसे कहा कि ठीक है मैं तुम्हें पार कराऊंगा। तो वो पार कराने लगा, उसका हाथ पकड़ के नदी पार कर रहे थे और जो दूसरा वाला था ना, वो क्या कर रहा था, उसको घूर घूर के देख रहा था मोटी मोटी आंखों से। क्यों? क्योंकि भाई पराई स्त्री को हाथ लगाया, हाथ पकड़ लिया, अब नदी पार हो गई, पार हो गई नदी, ब्राह्मण गए अपने रास्ते, स्त्री गई अपने रास्ते। एक घंटा बीत गया, दो घंटे बीत गए, अब दोनों ब्राह्मण चलते जा रहे हैं और दोनों में कोई बातचीत नहीं है। तो जिसने पार कराई थी नदी, उसने दूसरे वाले को देखा और कहा, भाई क्या कारण है, बात ही नहीं कर रहे हो। उसने गुस्से से उसे बोला, तुझसे क्या बात करना है, हमारे नियम धारणाएं तूने तोड़ दी, तुझसे मैं कभी बात नहीं करूंगा। तो पहले वाले ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग मजेदार आंसर दिया उसे, पता क्या कहा, उसने कहा, उस स्त्री को नदी पार कराए मुझे दो घंटे बीत चुके हैं, तूने अभी तक पकड़ के रखा है। तो मुझसे ज्यादा मर्यादा किसने भंग की? एक होता है हाथ से पकड़ना और एक है यहां से पकड़ना। अक्सर जीवन में देखना, कर्म दूसरे के गलत हैं, भोग आप रहे हो, होते ऐसे, कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है और मैं सोच रहा हूं क्यों कर रहा है, ऐसे नहीं करता वैसे कर देता, ऐसे नहीं कर सकता था क्या, यूं करता तो वैसा हो जाता, ऐसे होता तो वैसा हो जाता, होता है कि नहीं होता है? मेजॉरिटी वेस्ट थॉट्स हमारे कारण नहीं होते, कर्म कोई और कर रहा है, भोग मैं रहा हूं, हो रहे ऐसे है ना। याद रखेंगे लाइफ के अंदर, इस लाइफ के अंदर चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, किसी भी फील्ड के हैं, चाहे वो खिलाड़ी हैं, किसी भी स्पोर्ट्स के हैं, चाहे घर में रहने वाली माताएं हैं, चाहे संसार के अंदर किसी भी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, याद रखेंगे लाइफ के अंदर डाउनफॉल, एक है सक्सेस, एक है फेलियर। फेलियर के तीन मुख्य कारण है, केवल तीन मुख्य कारण हर एक के, क्या है? पहला परचिंतन, क्या क्या है परचिंतन, आध्यात्मिकता की भाषा में कहते हैं दूसरे के बारे में सोचना, परदर्शन दूसरे को देखना है ना, परमत दूसरे के अनुसार काम करना, दूसरे का है आपका नहीं है। याद रखेंगे हर इंसान अलग है, एक ही चीज हर एक पर नहीं लागू होती, इसीलिए सबसे पहले यदि हम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो मन के इस विघ्न को दूर करने के लिए याद रखेंगे, चेक करेंगे आपकी लाइफ में भी जब जब आपको डाउनफॉल हुआ है, आध्यात्मिकता में कहते हैं पर चिंतन पर दर्शन परमत पतन की जड़ है, याद रखेंगे। स्वचिंतन स्वदर्शन और श्रीमत यानी भगवान की मत, ये उत्थान की ओर ले जाती है। लाइफ के अंदर ये सबक सीख लें
जब भी डाउनफॉल होने लगे, जब भी मोरल डाउन होने लगे, चेक करना और चेंज कर लेना, अंदर चेक करना। अक्सर नहीं, हमेशा ऐसा होता है, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत मेरी पतन का कारण बन रहा होता है। बच्चों को भी ऐसा होता है, जब देखते हैं ना, इसने ज्यादा पढ़ लिया है, इसने ज्यादा कर लिया है, मेरे पास तो ये भी नहीं है। कंपैरिजन, दूसरे को देखते हैं ना, अपनी तुलना दूसरे के साथ करते हैं। याद रखेंगे, इस दुनिया में कोई दूसरे के जैसा नहीं है। भगवान की सृष्टि में हर व्यक्ति यूनिक है, अलग है, यूनिक है। आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। याद रखेंगे, बोले मेरे साथ, मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। मैं शक्तिशाली हूं, मैं शांत हूं। हर असंभव को संभव करने की मेरे भीतर शक्तियां हैं। है कि नहीं है? सब में है, क्योंकि सब एक एक सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की संतान है। ये संकल्प, मैं कौन हूं और मैं किसका हूं, आज मॉर्निंग क्लास में किया ना, मैं किसका हूं, किसकी संतान हूं, खुद भगवान की संतान हूं, है ना, जो सर्व शक्तियों का सागर है, जिसे कहते हैं ऑल माइटी अथॉरिटी, उसकी आप संतान हो। ये संकल्प अंदर शक्ति भरता है, ये याद, ये स्मृति, है ना, ये अंदर समर्थी लेकर आती है, मैं कौन हूं और मैं किसकी संतान हूं। ये याद रखेंगे, स्मृति की बात है सारा। एक संकल्प से स्थिति परिस्थिति बदल जाती है और दूसरे संकल्प से स्थिति परिस्थिति बदल जाती है। आप देखोगे आपकी लाइफ के अंदर क्या वंडरफुल मैजिकल चेंजेस होते हैं। मैंने अपनी लाइफ के अंदर, टाइम कम है नहीं तो अपनी लाइफ के, मैं ऐसे ऐसे आपको एक्सपीरियंस सुनाती, असंभव भी संभव हो जाते हैं। और वैसे भी आप किसी भी खिलाड़ी के या कोई भी व्यक्ति संसार में जिसने एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है, उसके उस उन्नति का मूल कारण उसके उच्च विचार है और कुछ नहीं है, क्योंकि विचार से जिंदगी बदलती है। ये याद रखेंगे, जैसे गीत था, जैसा सोचोगे तुम वैसे तुम बन जाओगे, वैसे तुम बन जाओगे। यदि कुछ ऊंचा बनना चाहते हैं तो पहले ऊंचा सोचना पड़ेगा, है ना, ऊंचे विचार बोलने पड़ेंगे, ऊंचा व्यवहार करना पड़ेगा, फिर अपने आप आपके साथ सब कुछ ऐसा होगा टॉप मोस्ट, है ना। चाहते हैं कि नहीं सब? तो ये सब चीजें किसके हाथ में है? किसी और के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। आप चाहें तो परिस्थिति को बदल सकते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको बताती हूँ, आप सभी कर सकते हो, बहुत ही वंडरफुल एक्सपेरिमेंट है जो हम सभी रोज करेंगे। और इसी एक्सपेरिमेंट के साथ, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं बताने की, इस एक्सपेरिमेंट के साथ हम आज का ये स्पीच जो है यहीं पर विराम देंगे। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट आपके बहुत काम आएगा। क्या करना है हमें, कभी भी कोई परिस्थिति आपको लगे, पता होता है ना हमें कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, ये चीजें मेरे अनुकूल नहीं है, सब चीजें प्रतिकूल हैं, होता है ऐसे सबके साथ होता है, हर रोज होता है। कई बारी कई लोग ऑफिस जाते हैं, पता होता है जो जिससे मिलने वाला हो ना, वो मेरा कहना मानने वाला ही नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट मैंने बहुतों से करवाया और आज तक कभी भी किसी का विफल नहीं हुआ है। आप सब कर सकते हो। याद रखेंगे, लाइफ में एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स चलते रहने चाहिए, है ना। ये एक्सपेरिमेंट हम सभी को करना है, ये प्रयोग सबको करना है। योग का प्रयोग कहते हैं इसे। संकल्प से सिद्धि कैसे मिलती है, क्या करना है उसका एक छोटा सा, क्योंकि विजुअलाइजेशन अक्सर होती नहीं है, लेकिन मैं उसको एक छोटा सा आपको तरीका बताती हूँ। सभी ने ड्राइंग बनाई है बच्चों में जब छोटे होते हैं? एक ड्राइंग सबने बनाई होती है अक्सर, मैंने भी बनाई थी, याद रखना, एक ड्राइंग है, सबके सबके अंदर कॉमन है, वो सबने बनाई थी जब हम छोटे थे। पहाड़ होते हैं और एक झोपड़ी थी, फिर एक नदी बहती है ना, एक पेड़ होता है और ऊपर एक सूरज, बनाया है ना सबने, क्लाउड्स भी होते हैं। सबने बनाई है ना। रोज एक सीनरी हमारे सामने आती है, बहुत सारे सीन्स आते हैं लाइफ के अंदर। अब इस पूरी सीनरी में सबसे इंपॉर्टेंट है वो सूरज जो ऊपर चमक रहा है, बिकॉज वो सूरज ना हो तो अंधेरा है पूरी पेंटिंग के अंदर, है ना। ये याद रखना, यहां हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे संकल्पों को सिद्धि प्रदान करता है, वो है परम पिता परमात्मा, ज्ञान का सूर्य, शक्तियों का सूर्य, प्रेम का सूर्य, आनंद का सूर्य। सूर्य यानी स्रोत, स्रोत सोर्स है वो उन सब चीजों का, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सीन जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो जाए, समझो मैं चाहती हूं सामने वाली चीजें, आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप एक कंपटीशन करने जा रहे हो, आप उस सीन को अपने सामने लेकर आओ। हम अक्सर सीन बनाते हैं और उस सीन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज सूर्य, परमात्मा की किरणें उस सीन पर पड़ती जा रही हैं, और ये चीज प्रैक्टिकल है और यही सत्य है। यही करना है आपको। हम कोई भी चीज करने जा रहे हैं, समझो हम चाहते हैं सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ बहुत अच्छी तरह पेश आए, सिचुएशन खराब है, सिचुएशन ये कहती है कि सामने वाले को मुझसे लड़ना चाहिए, कुछ ऐसा हो गया है, सिचुएशन ये कहती है कि मैं टाइम पर मैंने काम नहीं किया है, इसे मुझे डांटना चाहिए, ये कहती है सिचुएशन। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, मैं इसके उल्टा चाहती हूँ कि सामने वाला तो मुझसे प्यार से बात करे। सिचुएशन ये कहती है कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, पर मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी जीत फिर भी हो। तो देखो अपनी जीत को अपने सामने, और उस जीत के चित्र के ऊपर परमपिता परमात्मा की किरणें पड़ रही हैं। इस सीन को जब तक आप उस ग्राउंड पर पहुंचो, जब तक उस सीन को आप प्रैक्टिकल में लेकर आओ, वो टाइम आए, इस सीन को मन में बिल्कुल इमर्ज रूप में रखो। कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट किया है, ये आपके हाथ में है। सिचुएशन कुछ भी हो बाहर है, लेकिन यदि आप खुद ये कर पाओ, और ये एक दिन का बात नहीं है, हो सकता है एक बारी में ना हो, पर बार बार कहते ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। तो बार बार प्रैक्टिस करने से वो चीज प्रैक्टिकल हो जाती है। यहां से शुरू करेंगे, जब तक आप मैदान जंग पर जाओगे तब तक जीत यहां पर हो जाएगी। तो मन जीते, बाहर क्या है, जग, जगत जीत हो जाएगा। तो चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, करें। ओके, ओम शांति। चारों ओर से मन बुद्धि को हटा लें। मैं शक्ति हूं, स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हो। अब एक चित्र बनाए मन की स्लेट पर, देखें स्वयं को, मेरे हाथ में गोल्ड मेडल है, मेरे चारों ओर विशाल सभा है, हर व्यक्ति मेरे लिए ताली बजा रहा है, चीयर अप कर रहा है, सब मुझसे खुश हैं, और मैं इस जीत से खुश हूं। अनुभव करें इस आंतरिक खुशी को, आंखों की चमक को, चेहरे की मुस्कुराहट को, अंदर के जज्बे को, भीतर के जोश को, कभी ना खत्म होने वाले उमंग को, उत्साह को, खुशी को, और मेरे बिल्कुल ऊपर स्वयं सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा, जिनकी शक्तियां मुझ पर पड़ती जा रही हैं। स्वयं परमात्मा की छत्र छाया मेरे इस होने वाले भविष्य पर है, ये सत्य है, यही होने वाला भविष्य है। स्वीकार करें, संभालें और बार बार इस चित्र को स्मृति पटल पर उजागर करते जाएं। यही सत्य है, यही भविष्य है। ओम शांति।
थैंक यू, थैंक यू अदिति बहन जी का। आपकी तालियां बता रही हैं कि आपको सेशन कितना अच्छा लगा। बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल टेक्निक्स हमें दिए हैं, कैसे संकल्प से सिद्धि हो सकती है, जिसको हम सार रूप में कह सकते हैं कि संकल्प एक बीज है, और किसी भी नेगेटिव संकल्प को हमें कभी भी पानी या खाद, माना टाइम और एनर्जी नहीं देना है। अपने संकल्पों के लिए खुद जिम्मेवारी लेनी है, और सफलता के तीन मुख्य सूत्र बताए, स्वचिंतन, स्वदर्शन और श्रीमद्। और सबसे इम्पॉर्टेंट और पावरफुल टूल बताया कि मैं कौन हूँ और किसकी संतान हूँ। ये अगर हमें स्मृति रहे तो हमारे हर श्रेष्ठ संकल्प की सिद्धि निश्चित है। थैंक यू सो मच अदिति बहन जी, एक बार फिर से तालियों से आभार प्रकट करेंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे विशिष्ट अतिथि भ्राता अशोक कुमार जी। उनके परिचय में हम आपको बताते हैं कि अशोक कुमार भाई जी एथलेटिक्स कोच हैं उत्तर प्रदेश पुलिस टीम के। भाई जी के बारे में, ये वर्ल्ड एथलेटिक्स स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स लेवल 1 कोच हैं। इन्होंने 11 बार नेशनल मेडल जीता है 100 मीटर हर्डल्स में, विद 2 मीट रिकॉर्ड्स इन नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। एज अ कोच आपके बहुत स्पेशल अचीवमेंट्स हैं। नेशनल सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में आप उत्तर प्रदेश टीम के चीफ कोच रहे, और आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश टीम ने टीम चैंपियनशिप जीती। वर्ल्ड पुलिस गेम्स यूएसए 2025 में इंडियन पुलिस एथलेटिक्स टीम के आप स्प्रिंट और हर्डल कोच थे, और आपके नेतृत्व और कोचिंग में टीम ने टोटल 15 मेडल्स जीते। आपके जीवन में हमने देखा है आपके विशेषताएं हैं अनुशासन, दृढ़ता एवं हर क्षण कुछ नया सीखने की लगन, और जो भी सीखा है उसे अपने खिलाड़ियों को सिखाने की तन्मयता, और उनके आध्यात्मिक विकास के लिए आप हमेशा सक्रिय रहते हैं। तो ऐसे हमारे विशिष्ट अतिथि भ्राता अशोक कुमार जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगी कि आप अपने अनुभव और विचार प्रस्तुत करें। थैंक यू।
ओम शांति। थोड़ा जोर से खिलाड़ियों की तरह बोलें, ओम शांति। तो ये अनुभव साझा करने की कड़ी में सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ब्रह्म कुमारी संस्था का, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो खिलाड़ियों के लिए कार्य करती है, अपितु समाज के हर वर्ग और हर कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय समय पर ऐसे सेमिनार आयोजित करती है। तो धन्यवाद देना चाहूंगा मैं हमारी सुमन बहन और रुचि बहन का, जिन्होंने अथक प्रयास किया और हम यहाँ तक इस मंच तक आए, इस ज्ञान सरोवर में आए और हमने राजयोग मेडिटेशन की शिक्षा ली। एक वर्ष पहले यही प्रयास किया गया था लेकिन ऑफिस से परमिशन ना होने की वजह से हमारी टीम तो नहीं आ पाई, लेकिन मैं अकेला ही यहाँ पर आया अपनी छुट्टी लेकर, क्योंकि जो प्रभावशीलता रहती है वो खींच ले जाती है। यहाँ की ब्रह्म कुमारी बहनों द्वारा किया गया तब यहाँ की प्रभावशीलता मुझे खींच के ले आई कि कुछ राजयोग मेडिटेशन सीखकर और हमारे खिलाड़ियों का कुछ कल्याण हो सके, वो विश्व पटल पर आगे बढ़ सकें। इसलिए मैं एक वर्ष पूर्व भी ऐसे ही आया था और इस एक वर्ष की जर्नी में राजयोग मेडिटेशन से क्या मिला उसका मैं अभी बताऊंगा, अनुभव साझा करूंगा आपके साथ। तो ये दो अनुभव मैं आपको साझा करूंगा, एक तो मेरे खेल कैरियर से जुड़े अनुभव थे और अब एक कोचिंग कैरियर जब मैंने एज ए कोच शुरू किया वो मैं अनुभव आपको बताऊंगा। तो ये बताने से पहले यहाँ उपस्थित हमारे गुरु द्रोणाचार्य अवार्डी श्री बलवान सर, श्री ओपी दहिया सर, और मैं नाम ना नहीं ले सकता उनका क्योंकि मुझे अभी नाम ज्ञात भी नहीं है, माफी चाहूंगा, उन सभी कोचेज को मेरा प्रणाम स्वीकार करें क्योंकि अपने जो आगे गुरु होते हैं उन्हीं की जो कार्य क्षेत्र में उपलब्धियां हैं, उनके द्वारा की गई मेहनत, जो खिलाड़ी उन्होंने तैयार किए हैं देश के लिए, उन्हीं से हम सीख कर आगे बढ़ते हैं। तो अपने कोचिंग से जुड़े मैं कुछ अनुभव बताता हूं। एक वर्ष पूर्व जब मैं यहां आया, आने के बाद में जब मैं वापस कोचिंग में गया तो मुझे कुछ जो बच्चे मिले, जो एथलीट्स मिले, उनमें अधिकतर बच्चे इंजरी से जूझ रहे थे। किसी का घुटना खराब था, किसी की स्पाइन में इंजरी थी, क्योंकि जो अच्छे मतलब जो परफॉर्म कर रहे थे एथलीट्स वो परमिशन पर जा चुके थे और मेरे पास 5-6 ये एथलीट्स थे जो इंजरी से थे, जूझ रहे थे और डॉक्टर्स ने भी इतना कह दिया था कि ये अभी स्पोर्ट्स मुश्किल कर पाएंगे। तो यहां से राजयोग मेडिटेशन में सीख के गया तो उनके अंदर भी सकारात्मक सोच डेवलप करने में मैं सफल रहा कि नहीं, आप अच्छा कर सकते हो। और मैं ये उदाहरण मतलब बता नहीं रहा हूं, मैं उन उदाहरणों को अपने साथ भी लेके आया हूं। मैं खड़ा करना चाहूंगा जोशिका और बबीता को। जो नी की इंजरी से जूझ रही थी और स्पाइन में इंजरी थी बबीता के भी, डॉक्टर ने काफी प्रयास किया लेकिन बाद में उन्होंने कह दिया आप स्पोर्ट्स छोड़ दीजिए। तो ये एक साल से इनको मैं मेडिटेशन कराता था लेकिन इनको भी पता नहीं था कि राजयोग मेडिटेशन है। अब इनको यहाँ आके ज्ञात हुआ है कि ये राजयोग मेडिटेशन था, मैं इनको साथ लाना चाहता था ये आए बच्चे। तो जो बच्चे परमिशन पे थे आज ये उनसे बेटर कर रहे हैं और इंजरी तो इनकी सही हो गई, डॉक्टर भी बोलते हैं नहीं काफी अच्छा आपने प्रयास किया है, तो ये राजयोग मेडिटेशन से ही संभव हो सका है। अधिकांश खिलाड़ी सोचते हैं ये मेडिटेशन हमें हेल्प कैसे करता है, तो मैं बताना चाहूंगा। ये अपने रूम से हम निकले, बारिश थी बहुत तेज, किसी ने अपना रेनकोट पहना, किसी ने अपना छाता लिया और यहां तक पहुंचा। तो मौसम में तो बारिश थी, अगर हम नहीं लेके आते तो क्या होता, भीग जाते। सर्दी होती है हम जैकेट पहन लेते हैं, बाहर तो है सर्दी तो हमने जैकेट पहना उससे बचने के लिए। तो जब स्पिरिचुअलिटी और ये मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन, इसकी वजह से जब ये एक ऑरा क्रिएट होता है और जो हमें शक्ति मिलती है उस सुप्रीम पावर से, तो वो हमें इंजरी से भी बचाती है, स्ट्रेस से भी बचाती है और आपको सफल होने में मदद करती है। जब मैं खेल कैरियर में था तो लगभग 11 नेशनल मेडल थे मेरे और मैं बहुत स्पिरिचुअल था, मेडिटेशन करता था। तो जब बहन अदिति ने बताया कि अपने पीछे एक पास से कुछ सीखना चाहिए, उस पड़ाव से जो मैंने सीखा, कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि खेल कैरियर अपनी बुलंदियों पर पहुंचने से पहले ही मुझे छोड़ना पड़ा, तो उस पड़ाव से मुझे सीखने को मिलता है कि स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन मेरा कम हो गया, छूट गया मुझसे। तो वो जो गलती मैंने की या हो गई, कैसी परिस्थितियां आई मुझे भी समझ में नहीं आता, और उससे मैं सीखा। मैंने कहा जो मैं एथलीट्स मेरे होंगे उनको मैं रेगुलर करवाऊंगा और पिछले एक साल से मैं उनको 15 मिनट पहले बुलाता हूँ ग्राउंड में, रेगुलर राजयोग मेडिटेशन उनको करवाता हूँ और आज रिजल्ट सुन के आ गए कि कुछ बच्चे वर्ल्ड पुलिस मेडलिस्ट भी हुए हैं।
थैंक यू सो मच भ्राता अशोक भाई कुमार जी का। आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो अपने आप में सब कुछ कहता है। और हमें याद है कि लास्ट ईयर आप अकेले आए थे, एक बार थोड़ी सी निराशा हुई थी कि टीम का जो परमिशन थी वो कैंसिल हो गई थी ऑफिशियली, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मुझे जरूर जाना है क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे जीवन की एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। तो वो अपनी पर्सनल कैजुअल लीव लगा के यहाँ पे आए थे, अकेले आए थे, कोई गाइड भी नहीं था साथ में, और वो जो सीख के गए अपने अंदर शक्ति और अनुभव प्रेरणा भर के गए। तो इस बार वो यूपी पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड से पीएसी के 22 प्लेयर्स और कोचेस को लेके आए हैं अपने साथ, और ये अकेले आए थे और अब 22 लोगों को लेके आए हैं, उनको लीड कर रहे हैं, जिसमें 6 कोचेस हैं और बाकी प्लेयर्स हैं और अलग अलग गेम्स के हैं, एथलेटिक्स, स्विमिंग, वॉलीबॉल, फुटबॉल। और आप देखिए 1 से 22 उनके संकल्प की सिद्धि है। इससे बड़ा प्रैक्टिकल प्रूफ और हमें क्या चाहिए कि संकल्प से सिद्धि कैसे होती है। और ये सभी प्लेयर्स और कोचेस ऑफिशियली नॉमिनेट हुए हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से इनको भेजा गया है। उनका अकेले का अनुभव और फीडबैक सुन के जो ADG सर थे उन्होंने कहा कि हमें जरूर भेजना है अपने खिलाड़ियों को, और आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे ही एक ऑफिशियल टीम हमेशा नॉमिनेट होके आएगी स्पोर्ट्स विंग के लिए। थैंक यू सो मच। अब मैं अनुरोध करूंगी, हमारे साथ हैं आदरणीय हमारी सीनियर राजयोगा टीचर आदरणीय ब्रह्मा कुमारी तारा दीदी जी। उनके विषय में हम कहना चाहेंगे कि आप लगभग 50 वर्षों से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं। आप अहमदाबाद गुजरात से हैं और वर्तमान समय 21 वर्षों से गुजरात चिलोड़ा में सेवा केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ के हेड हैं आप। आप स्पोर्ट्स विंग के गुजरात जोन के भी जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप अन्य विंग्स जैसे एडमिनिस्ट्रेशन विंग, पॉलिटिकल विंग इत्यादि में भी अपनी सक्रिय रूप से सेवाएं दे रहे हैं। दीदी जी को मैं पिछले एक दिन से ही संपर्क में आई हूँ और मैंने देखा कि उनका स्वभाव बहुत ही विनम्र है, निर्माण चित्त हैं और अपनी छोटी बहनों को, अपने जूनियर्स को बहुत ही प्रोत्साहित करती हैं। तो ऐसे विशिष्ट हमारी दीदी जी के लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सेशन की आशीर्वचन हम सभी के लिए रखें। ब्रह्मा कुमारी आदरणीय तारा दीदी जी,
ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अत्रे मंच पर उपस्थित राजयोगिनी मीठी सबकी प्यारी हमारी अतिथि दीदी, आज के हमारे मेहमान आदरणीय भ्राता अशोक कुमार जी, और बड़े सुचारू रूप से मन संचालन करने वाली हमारी कुमारी अतिथि दीदी जी, और आप सभी पूरे भारत से पधारे हुए आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करके यहाँ से जाना है ऐसे परमात्मा के सौभाग्यशाली आप सभी भाई बहने अभी ये सोचेंगे हम सौभाग्यशाली कैसे हैं। पहले अपना सभी राइट हाथ आगे करेंगे, राइट हाथ सभी अपना आगे करेंगे, अभी अपने राइट हाथ को हम पीछे ले जाएंगे अपनी पीठ के आगे, अभी हम अपने आप को अपने से शाबाशी करेंगे। शाबाश है ना? अब ये शाबाशी कौन सी थी? सभी स्वीकार करेंगे ये आपकी शाबाशी आपने अपने आप से कौन सी ली, जो आप एक श्रेष्ठ संकल्प किया पावरफुल दृढ़ संकल्प किया कि मुझे या आध्यात्मिक परिसर ज्ञान सरोवर में इस स्थान पर मुझे जाना है, मुझे कुछ आध्यात्मिक शक्तियों को पाना है और आप यहाँ तक पहुँचे, आपका दृढ़ संकल्प और वर्ल्ड ऑलमाइटी सुप्रीम पावर परमात्मा ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, तो इसीलिए आप सभी सौभाग्यशाली हो। अभी जोरदार ताली बजा देंगे अपने लिए। अब आप क्यों सौभाग्यशाली हो? तो आप कोई ऑर्डिनरी स्थान पर यहाँ नहीं आए हो, ये कोई ऑर्डिनरी स्थान नहीं है, बड़ी चैलेंज के साथ है कि आप ये जगत के लास्ट और महान स्थान पर आए हो। यही लास्ट स्थान है, यही महान स्थान है और इससे ऊंचा स्थान दुनिया में कहीं नहीं है। इसीलिए आप सभी सौभाग्यशाली हो। सेकंड पॉइंट, क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक है संकल्पों से सिद्धि, धर्म के शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा को संकल्प आया, नव सृष्टि का सर्जन किया। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति का रूप बहुत अच्छा होता है, किसी का दिमाग कंप्यूटर माइंड से चलता है, कोई व्यक्ति ये कहता है न जाने भगवान ने उसके लिए स्पेशल टाइम लिया है, समय निकाला है और उसके स्टैच्यू को बनाया है, इसके दिमाग को बनाया है और इसीलिए इतना पावरफुल है, इसलिए इसके रूप में इतना आकर्षण है, तो जरूर कोई समय भगवान ने इसके लिए समय निकाला होगा। तो आप ऐसे स्थान पर बैठे हो, कोई ऑर्डिनरी स्थान पर नहीं बैठे हो। अब सुनना कान खोल के कि वो कोई और समय नहीं था, जो एग्जाम्पल दिया वो ही ये स्थान है, वो ही ये समय है और इसी समय में वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी सुप्रीम पावर परमपिता परमात्मा इस प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम तन द्वारा परमपिता परमात्मा ने आपको यहाँ बुलाया, आपने दृढ़ संकल्प किया, आप यहाँ तक आ गए और ये 3 दिन इस परिसर के अंदर आप सुंदर रूप से इस वातावरण का, इस दिनचर्या का अच्छी तरह से लाभ ले रहे हो, तो भाग्य विधाता भगवान ने भाग्य की कलम आपके हाथ में दे दी है। आप ये सौभाग्यशाली आत्माएं हो। अब ये भाग्य की कलम जब आपके हाथ में भगवान ने दे दी है, अब भाग्य विधाता ने कहा जितनी लंबी लकीर खींचना चाहो आप स्वयं ही खींच लो, आपके अपने हाथ में है। और अभी अभी हमारी अतिथि दीदी ने बहुत अच्छी बात सुनाई, मन की बात, कि जो कुछ संकल्प आता है मन से आता है, मन बड़ा पावरफुल है और इसलिए भजन में भी कहा है मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई, मन मेरा देव तुल्य है। अब जब मन को मैंने अपने आप से आज से दृढ़ संकल्प कर लो, मानो पूरे साल के लिए आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं, आप सभी कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से जाने के बाद 1 घंटा अपने लोकल स्थान पर इस विश्वविद्यालय के अंदर मुझे अपने आत्म कल्याण के लिए जाना जरूर है। 1 आना सारे दिन में मुझे देना है, 1 आना माना एक बार 24 घंटे में एक बार मुझे भगवान के घर जाना है, और पिता का घर सो आपका अपना घर है। और जब ये मन में दृढ़ संकल्प कर लिया, जब बुद्धि को मैंने ये संकल्प दे दिया, तो सबकॉन्शियस जो माइंड है उसके अंदर ये फिट बिठा दिया, तो जहां जो दृढ़ संकल्प करते हैं, मानो कोई भी बात की सिद्धि भी चाहिए, तो ये नहीं सोचना कि मुझे ये करना है, ये कब होगा, मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे नहीं। परंतु जो करना है, जो कहा संकल्प से सिद्धि, तो संकल्प से सिद्धि का मीनिंग है जो मुझे अच्छा करना है वो मेरी बुद्धि को मुझे वो काम दे देना है। और जब बुद्धि को देना अर्थात सबकॉन्शियस माइंड में मैंने ये डाल दिया, तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाती है। और ये पॉजिटिव एनर्जी जैसे क्रिएट करती है, तो कहते हैं आई एम पावरफुल बीइंग। माना ये मेरा पावरफुल संकल्प, वो एनर्जी मुझे अपने आप से, जैसे कहते हैं जैसा लक्ष्य होगा ऐसे लक्षण आएंगे। तो ये पावरफुल संकल्प आपको सिद्धि जरूर दिलाएगा। और इसलिए कहा गया है कि जो संकल्प दृढ़ करते हैं, तो इस संकल्प के अंदर ये सिद्धि समाई हुई होती है। आप अपने आप से ये संकल्पों की जहां दृढ़ता ले ली, तो उसका अनुभव आप स्वयं के अंदर स्वयं ही कर पाएंगे। तो अब परमात्मा कहता है कि ये श्रेष्ठ संकल्पों की सिद्धि का समय है। समय कोई और नहीं था, और इसलिए कहा जिसने अपने समय को, समय के महत्व को जान लिया, वो अपने जीवन को महान बना देता है। तो वो कोई और समय नहीं है, वो यही समय है जिस समय परमपिता परमात्मा ने जो जीवन रूपी सृष्टि मेरी बनाई थी, वो यही समय है, वो यही राजयोग है। और इसीलिए हमारे मन की भी यही शुभ भावना और शुभकामना आप सभी के लिए है कि यहाँ से जाने के बाद अपने लोकल स्थान पर 24 घंटा मेरा अपना है, एक घंटा अगर हमने ईश्वर अर्थ अपने आत्म कल्याण के लिए निकाला, तो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। अपना परिवर्तन मैंने किया है तो विश्व परिवर्तन कोई दूर नहीं है। और वो शक्ति परमात्मा आप सभी के अंदर भर रहे हैं, सिर्फ हमें अपना दृढ़ संकल्प करना है। तो यही शुभ भावना शुभकामना हमारी आपके प्रति है। आप सभी यही दृढ़ संकल्प करके जाएंगे, परमात्मा दिन दोगुना चार चौगुना आपके अंदर ये शक्ति भरेगा, और ये श्रेष्ठ संकल्प आपके आप अपने जीवन से अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हमें स्मृति दिलाई कि भाग्य विधाता ने स्वयं हमें चुना है, और हम सब यहाँ जो आए हैं वो कितने भाग्यशाली हैं। समय का महत्व बताया, इस वर्तमान समय का। तो जैसा दीदी जी ने कहा है कि 24 घंटे में एक बार भगवान के घर में जरूर जाना है, वापस अपने अपने स्थानों पे जाके। तो हम दीदी जी को कर सकते हैं ये आश्वासन, दे सकते हैं कि हम यहाँ से जाने के बाद सेंटर पे जरूर जाएंगे। कौन कौन, कौन कौन हाथ उठाएगा? वेरी गुड। सब एक बार यहाँ से जाने के बाद सेंटर के संपर्क में जरूर आएंगे। थैंक यू। अब मैं हमारी ब्रह्म कुमारी बहनों से अनुरोध करूंगी कि हमारे विशिष्ट अतिथि जो मंचासीन है आज, आदरणीय भ्राता अशोक कुमार जी, तो उनका सम्मान करेंगे। हाँ, आदरणीय तारा दीदी जी अशोक कुमार भाई जी का सम्मान करेंगे। एंड करने से पहले हम परमात्मा की याद में बैठेंगे 2 मिनट।